ओम शांति। राजयोग की सरल विधि हम सभी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। इस यूनिवर्सिटी में स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है योग का। जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता जाता है उतना योग और सरल होता जाता है। जितनी दिव्य गुणों की धारणा हम करते हैं उतना योग और सरल होता है। जितनी हम सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं, परिणाम स्वरूप योगाभ्यास में और आगे बढ़ते जाते हैं। तो योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन ब्राह्मण संसार से हमेशा एक आवाज सुनाई देती है, चारों सब्जेक्ट में योग का सब्जेक्ट कठिन अनुभव होता है। इसलिए हम आपके साथ आज कुछ ऐसी बातें, ऐसे कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ मेथड्स शेयर करेंगे ताकि योगाभ्यास आपके लिए सरल हो जाएगा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में है ही नहीं। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों में नूर बनकर रहते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में पलते रहते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है, लेकिन वो भाग्य केवल योगी आत्माओं को मिलता है, क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में स्वयं भगवान नूर बनकर सदा बसे रहते हैं। दूसरी बात, इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं योगी आत्माएं कहलाती हैं। उनके पास दो कलाएं होती हैं जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला ये होती है, वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं। माया दुश्मन के राज में रहकर, माया दुश्मन के वार से अपने मन और बुद्धि को सदा सेफ रखते हैं, मन बुद्धि को सदा बचाकर रखते हैं। ये चतुराई योगियों के पास होती है। कभी भी वो दुश्मन से धोखा नहीं खाते हैं। दूसरी बात, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। योगी आत्माएं अपनी मन और बुद्धि को परम धाम में बाबा की याद में टिका कर रखते हैं और हर सेकंड अनेक पद्मों की अविनाशी कमाई करने में सफल करते रहते हैं, ये बुद्धिमानी उनके पास होती है, इसलिए वो बुद्धिमान कहलाते हैं। योगी आत्माएं इस संसार के पालनहार कहलाते हैं, जैसे परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को खजाने बांटते रहते हैं, उनकी पालना करते रहते हैं, ऐसे योगी आत्माएं भी परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और दूसरे तरफ आत्माओं को बांटते रहते हैं और उनकी पालना करते हैं। इसलिए मास्टर पालनहार या कहें मास्टर गॉड का टाइटल उनको मिलता है। संगम युग में जितने भी हमें वरदान मिलते हैं, वरदानों के सागर बाप से सबसे बड़ा वरदान है योगी भव का वरदान। जिन आत्माओं को योगी भव का वरदान प्राप्त होता है, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते जाते हैं। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं, अर्थात योगी भव का वरदान प्राप्त करने वालों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए हम सभी बच्चे वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं, लेकिन योगी आत्माएं संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। योगी आत्माएं परमात्मा का दिल जीत लेते हैं और जो परमात्मा का दिल जीत लेते हैं, परमात्मा सारे खजाने लुटा देते हैं, इसलिए वो संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं। पहली बात, स्वयं को आत्मा अनुभव करना। दूसरी बात, परमात्मा को यथार्थ रीति से समझना। और तीसरी बात, उनसे यथार्थ कनेक्शन जोड़कर रखना। इन तीनों बातों के बारे में अच्छी तरह से हमारे पास जानकारी होती है तो हमारा योगाभ्यास दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ता जाता है। पहली बात है, स्वयं को आत्मा कैसे समझें और क्यों समझें? हम बाबा के पास आए हैं आध्यात्मिकता की शक्ति प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिकता जो शब्द है, आध्यात्मिकता अर्थात जितनी आत्मिकता हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, उतनी आध्यात्मिकता की शक्ति बढ़ती जाती है। हम बाबा के पास आए हैं, बहुत सुंदर एक पहेली का हल प्राप्त करने के लिए। मैं कौन हूँ, ये एक पहेली है, एक पजल है। जिन आत्माओं को इस पहेली का हल प्राप्त होता है, वो आत्माएं इस ब्राह्मण जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। और जिन आत्माओं को मैं कौन हूं इस पहले का हल प्राप्त नहीं होता है, वो हल चलाने जैसी सदा मेहनत करते रहते हैं और हलचल में सदा आते ही रहते हैं। तो इसलिए मैं कौन हूं इस पहले का हल प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हम सभी बाबा के पास क्यों आए हैं? बहुत सुंदर अपने ही कैरेक्टर के बिल्डिंग 21 मंजिल की 21 जन्मों की बनाने के लिए यहाँ आए हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंग और इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ आए और उसका फाउंडेशन है आत्मअभिमानी स्थिति। जब इस फाउंडेशन पर हम काम करते हैं, प्रसाद करते जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है सारी बिल्डिंग सेकंड में कोलैप्स हो जाती है। तो हमें पूरे निश्चय के साथ इस आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहना जरूरी है। आपने देखा है यज्ञ के शुरू से आज तक भी हर मुरली में बाबा ये पहला पाठ दोहराते रहते हैं, आत्मा स्वयं को समझो। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का आत्मा में जो देह का भान कूट कूट के भरा पड़ा है उसको हमें हटाना है और 21 जन्मों तक नेचुरल आत्मा का भान रहे उसको हमें जुटाना है। कहने का मतलब है ये 84 जन्मों का होमवर्क है और हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। थोड़े समय में हमें ये पूरा होमवर्क पूरा करना होगा। तो आप अपने से पूछो कि कितनी मेहनत, कितना अभ्यास इस पहले पार्ट का हमें करना होगा। लेकिन हम थोड़े से इस ज्ञान मार्ग में पुराने हो जाते हैं तो हमें एक सूक्ष्म अहंकार आता है, ये पहला पाठ आत्मा का पाठ तो ये नयों के बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो हम उस पर इतना अटेंशन नहीं देते हैं, इस पर इतना अभ्यास नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप सदा हलचल में आते ही रहते हैं। इसलिए सदा याद रखें, जितना आत्मा का अनुभव सहज होता है, नेचुरल होता है, निरंतर होता है, उतनी बाबा की याद सहज होती है, नेचुरल होती है और निरंतर होती है। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा के पाठ को पक्का करना है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 लिया, उसका सीक्रेट यही है। बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा, इस अभ्यास पर विशेष बाबा ध्यान देते रहे। परिणाम स्वरूप बाबा ने नंबर 1 प्राप्त किया। तो हमें भी ये रियलाइज करना है कि यही पार्ट पहला है, यही पार्ट अंतिम है और यही पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पर बहुत जिगरी मेहनत करते जाना है। अभी आत्मा अनुभव करने की बहुत सरल विधि है। आत्मा अनुभव करने के लिए सबसे पहले आत्मा को देखना होगा। जब आत्मा दिखाई देती है तभी उसका अनुभव हमें होता जाता है। अभी आत्मा को कैसे देखेंगे भाई? इस शरीर को तो स्थूल आंखों से आईने में देखते हैं, तो आत्मा को देखने के लिए आत्मा की आंख से ही देख सकते हैं। तो आत्मा की आंख है बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान का चक्षु। इससे ही हमें आत्मा को देखना है। एकांत में बैठकर दिव्य नेत्र से भ्रुकुटि के बीच में मैं हूँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, इसको अनुभव करना है। पहले देखना है मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, फिर कैसा सितारा हूँ? शांत स्वरूप ज्योति बिंदु सितारा हूँ। शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस अभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। इसमें दो बातें हैं, देखने के परसेंटेज को हमें बढ़ाते जाना है। दिन प्रतिदिन आत्मा को देखने के परसेंटेज को बढ़ाते जाना है तो आत्मा के अनुभव की गहराई बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, उसमें स्थित होने के समय को हमें बढ़ाना है। एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, ऐसे समय को बढ़ाते जाना है। तो जैसा जैसा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, एक सेकंड में हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। कहते हैं जब खुद की स्मृति रहती है तब खुदा की स्मृति स्वतः ही याद आती है। तो हमें खुद की स्मृति में सदा स्थित रहने के अभ्यास को पक्का होते जाना है, करते जाना है। 24 घंटे में कितना समय तक मैं आत्मा सच्चे भान में टिकती हूँ, ये चेक करते जाना है और उसको बढ़ाते जाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और बाबा की याद से हमारे विकर्म भस्म होते जाते हैं। तो इसलिए आत्मा के अभ्यास को कूट कूट कर हमें पक्का करते जाना है। ये 63 जन्मों की गलत आदत हमें लगी है देह समझने की और देह को देखने की, इसको हमें सुधारना है। आत्मा अनुभव करके आत्मा को देखने का इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। ये पहली बात। दूसरी बात, हमें परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना है। क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं और यथार्थ रीति से मुझे याद करते हैं। इसका मतलब इसके पीछे कुछ राज छिपा हुआ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा का स्वरूप कैसा है? जैसे आत्मा का स्वरूप बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा का स्वरूप भी बिंदु स्वरूप ही है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बच्चे का स्वरूप, जैसे बच्चे का स्वरूप वैसे बाप का स्वरूप। अभी अंतर किसमें है, जो आत्मा में निजी सात गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, तो इन सात गुणों के बाबा सागर हैं। हम शांत स्वरूप आत्मा हैं तो बाबा शांति के सागर हैं। आप सोचो जिस बिंदु में सात सिंधु सात सागर समाये हुए हैं, वो कितनी पावरफुल बिंदु होगी, आप सोचो जरा। इसलिए लोगों ने परमात्मा के स्वरूप की तुलना इस दुनिया के स्थूल सूर्य के साथ की है। जैसा ये सूर्य भौतिक शक्तियों का वितरण करता रहता है, ऐसे परमात्मा ज्ञान सूर्य भी आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण करता रहता है। दूसरी बात, इस भौतिक सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। जब बारिश में कचरा होता है, गंदगी होती है, जब धरती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सारा भस्म हो जाता है, धरती साफ सुथरी कांचन होती है। ऐसे परमात्मा भी जो ज्ञान सूर्य हैं, उनका जो प्रकाश आत्मा पर पड़ता है तो आत्मा में जो भी गंदगी है, विकारों का जो कचरा है, वो भी भस्म हो जाता है और आत्मा एकदम साफ सुथरी हो जाती है। तो इस सूर्य का प्रकाश केवल एक ही साकारी दुनिया में फैलता है। परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं, उनका प्रकाश तीनों लोगों में फैलता रहता है। एक बार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मधुवन में मुरली चला रहे थे। एक सामने छोटी बच्ची बैठी थी तो मुरली के बीच में कहती है, बाबा क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? बाबा ने कहा, पूछो। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। अभी आप मधुबन में आकर मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब आप परम धाम में नहीं हैं? क्या इसका मतलब परम धाम अभी खाली है? बोलो भाई, क्या जवाब होगा? आप अपने घर से यहाँ आकर बैठे हैं तो घर में तो नहीं है ना, घर तो खाली है ना। तो परमात्मा तीनों लोगों के सूर्य हैं। परमात्मा को एक ही साथ अनगिनत स्थानों पर जाने की क्षमता है, अनगिनत कार्य करने की क्षमता है। इसलिए लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान है। एक ही साथ अनगिनत आत्माओं को वो शक्तियां प्रदान करते हैं, ये क्षमता उनके पास है। इसलिए अर्जुन ने जब भगवान का साक्षात्कार उसको हुआ था तो वर्णन में कहा था कि परमात्मा का स्वरूप इस सूर्य से हजारों गुना तेजोमय है। तो इस सूर्य से हजारों गुना तेजोमय तो नहीं है, लेकिन शक्तिशाली जरूर है। आप सोचो, जिस शक्ति के पास सारे संसार को चलाने वाली शक्ति है, सारे संसार की रचना का ज्ञान उनके पास है, सारा संसार उनके इशारों पर चल रहा है। लोग कहते हैं ये जो स्थूल वृक्ष होता है उसका पत्ता भी भगवान के इशारे के बिना नहीं हिल सकता है। ये क्यों लोगों ने कहा है, ये हरा पत्ता नहीं लेकिन हम जो कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्ते हैं उनको भी वही चलाता है, उनके इशारे के बिना हम एक कदम नहीं उठा सकते हैं। आप सोचो कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी, सोचो तो सही। हमने बाबा के ऑर्डिनरी समझा लेकिन आप सोचो सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारे संसार को चलाने की ताकत जिसके पास है, दुनिया की जो सर्वोच्च सत्ता है, दुनिया की वो सबसे बड़ी हस्ती है, कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी सोचो जरा। और उस हस्ती का नाम क्या है, किस नाम से उनको पुकारते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। दुनिया में किसी का भी नाम ऐसा नहीं है, किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन एक ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम केवल उस एक शिव पिता का ही नाम है। क्यों नाम है उनका? ये सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। हम सतयुग त्रेता युग में सत्य स्वरूप में टिकते थे, सत्य बोलते थे, द्वापर युग से वो हमने छोड़ दिया। अभी आप सोचो सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले जो सत्यता के सागर हैं, इस धरती पर सतयुग लाने वाले हैं, सभी आत्माओं को सत्य स्वरूप में टिकाने वाले हैं, कितनी उनके पास सत्यता की शक्ति होगी। इसलिए दुनिया में भावना में आकर लोगों ने कहा है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड। दूसरी बात शिवम अर्थात कल्याणकारी, सदा शिव अर्थात सदा के कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी, बेहद के कल्याणकारी। हम तो हद के कल्याणकारी हैं, कोई मेहमान हमारे घर में आता है दो तीन दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते भाई आपका टिकट कब है जाने का, देखो हद के कल्याणकारी है। बाबा तो कल्याण का सागर है, और देखो हम बच्चों ने बाबा की केवल द्वापर युग से ग्लानी की है। तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, इतनी ग्लानी करने के बाद भी वो रहम का सागर हम सबका कल्याण करने आया है। इस धरती पर बाबा से बढ़कर हमारा कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है। तालियां तो बजाओ भाई। सबसे जास्ती मेरा कल्याण चाहने वाला एक मेरा बाप है, ये तो हद के कल्याणकारी हैं आत्माएं, वो कल्याण का सागर है। तीसरी बात सुंदरम अर्थात वो सुंदरता के सागर हैं, सारी संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका उन्होंने लिया है, सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, उनको मिटाने वाले वो सुंदरता के सागर एक शिव परमात्मा है। आप सोचो कितने वो सुंदर होंगे। जो सुंदर बहुत सुंदर चीज होती है उसको देखकर दिल भरता ही नहीं है, लगता है बस देखते ही रहे देखते ही रहे देखते ही रहे। तो बाबा जो सबसे सुंदर हैं, योगी अर्थात परमात्मा के दीवाने, परमात्मा के परवाने, परमात्मा के सुंदरता पर फिदा होने वाले। खुदा पर जो फिदा होता है, खुदा भी उन पर फिदा होता है। तो कहने का मतलब है, परम धाम में हमें बाबा का ऐसा स्वरूप, उनका स्वरूप, उनकी प्रतिभा, उनकी विशेषताएं, उनके गुण, ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखते जाना है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। अभी जितना हम बाबा को पहचानते जाते हैं, उतना हमारा दिल का प्यार बाबा के प्रति बढ़ता जाता है। इस संसार में एक ही ब्रह्मा बाबा की आत्माएं हैं, जिन्होंने 100% भगवान को पहचाना है। बाकी अन्य आत्माओं ने पहचाना है, लेकिन नंबर वार पहचाना है। इसलिए नंबर वार प्यार का सौदा उनके साथ किया है। इसलिए जास्ती से जास्ती बाबा को हमें पहचानते जाना है और दिल का जो सच्चा प्यार है उनके तरफ हमें ट्रांसफर करते जाना है। बाबा कहते हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास है क्या? फकीर तो हो, बेगर तो हो, आपका अपना खुद का घर भी नहीं है, किराए से ये घर लेके रखा है प्रकृति से, खुद का भी घर नहीं है, क्या है आपके पास? केवल दिल के प्यार की सच्ची पूंजी आपके पास है, अमूल्य पूंजी है, उसका सौदा करने के लिए मैं आया हूँ। बोलो भाई, सौदा करना चाहेंगे उसके साथ? बाबा कहते, मैं बहुत पक्का सौदागर हूँ, जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूँगा, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होगा। भाई करना है कि नहीं करना है, बोलो? क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार हमारी स्वतः ही जुटती जाती हैं। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुटी रहती है, जितना प्यार उतनी देर तक बुद्धि रूपी तार बाबा के साथ जुटी रहती है। इसलिए मेरा जो प्यार है उस पर अधिकार केवल एक बाबा का ही है, किसी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं है। ये महसूसता हमें करना है, ये महसूसता जब हम करते हैं तो प्यार हमारा इधर उधर नहीं जाता है और योग हमें बहुत सरल अनुभव होने लगता है। अभी बाबा के साथ ही प्यार का सौदा करना है, ये अच्छी तरह से महसूसता होने के लिए 5 बातों पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं के प्यार पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से केवल हमने धोखे ही खाए, कड़वे अनुभव ही किए हैं। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, उनके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। देखो, भोली भोली माताएं सभा में बैठी हैं, वो प्यार का सौदा करने के लिए। बाबा कहते हैं, मुझे भोलापन अच्छा लगता है। जो बहुत भोले होते हैं उन पर मैं फिदा हो जाता हूँ। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजे। ऊपर वाले साहब को राजे करने के लिए केवल दिल में सच्चाई चाहिए। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस होते हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो प्यार समाप्त भी हो जाता है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। आत्माओं का प्यार तो विनाशी है, अल्पकाल का है, और एक गागर है वो गागर भी खाली है, वो तो सागर है प्यार का, ये तो गागर छलकने लगती है। तो बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस संसार में स्वार्थ के बिना कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है। एक ही परमात्मा निस्वार्थ प्यार करने वाले हैं। देखो आत्माओं के प्यार में और परमात्मा के प्यार में कितना अंतर है। एक ही वाक्य से आप समझ सकते हैं, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितना अंतर है। मनुष्य लेता है और भूल जाता है, भगवान देता है और भूल जाता है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का तो शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, उनसे प्यार करेंगे तो इम्प्योर ही बनेंगे। केवल संगम युग में परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो इन पांच बातों को हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना है और बाबा के तरफ प्यार को ट्रांसफर करते जाना है। जितना प्यार बाबा के तरफ ट्रांसफर करते जाएंगे, योगाभ्यास में गहन अनुभूतियां हमें होती जाएगी। क्योंकि प्यार के सागर की लहरों में लहराने से अल्पकाल का आनंद जरूर मिलता है, लेकिन प्यार के सागर के तले में जब हम डूब जाते हैं तो हमें हीरे माणिक मोती मिलते हैं, अर्थात योग के बहुत सुंदर गहन अनुभव होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं जब तक प्यार के सागर में हम लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं होती है। आत्मा में जो भी कचरा है वो उस सागर में समा जाता है। इसलिए योगाभ्यास अर्थात परमात्मा से प्यार करना, इसी को तो योग कहते हैं। और है क्या योग, लेकिन ये कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि सारे कल्प में हमने देह के माध्यम से देहधारियों के साथ प्यार की लेन देन की। अभी संगम युग में निराकार आत्मा समझकर निराकारी बाप से प्यार करने की कला को हमें सीखना है। ये कला अगर आपके पास प्राप्त होती है तो योगाभ्यास बहुत सरल होता जाता है। अभी यथार्थ याद किसको कहते हैं, परफेक्ट रिमेम्बरेंस किसको कहते हैं? बाबा ने मुरली में कहा है, पहले परम धाम रूपी घर को याद करो, फिर घर में मुझे याद करो। क्यों भाई, क्या बात है? इसको जरूरत क्या है परम धाम में बाबा को याद करने की? वो तो हमारा बाप है, उसको तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते भी याद कर सकते हैं, लेकिन परम धाम में ही बाबा को याद करना यथार्थ याद कहलाती है। क्यों? क्योंकि तीनों लोगों में परम धाम ही एक ऐसा स्थान है जहां कोई आवाज नहीं है, एकदम शांति ही शांति, परम शांति है। और जिसके कारण योगाभ्यास में, परमात्म मिलन में बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें होते जाते हैं। दूसरी बात, वो होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, तो जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, वो हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है, बाबा के साथ रहती है और परमात्म मिलन का आनंद लेती हैं। तो यथार्थ याद अर्थात परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा हैं, उनके सामने मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका है और मेरा मन बाबा के प्रति सोच रहा है, मन मना भव का मंत्र का जाप कर रहा है। इसको कहते हैं यथार्थ याद। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे आए, सूक्ष्म वतन में आए, फिर पुनः बाबा के पास चले जाएं और परमात्म मिलन का आनंद लेते रहें। अभी बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है, शक्तियां आत्मा में आना शुरू होता है और आत्मा की बैटरी चार्ज होना लगता है। अभी योगाभ्यास में क्या होता है, हमारा जो भान होता है, हमारा जो कॉन्शियस होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बंटवारा होता है। अभी मान लीजिए आप 2 साल के बाबा के बच्चे हैं, तो उस समय क्या होता है, 10 या 20% भान परम धाम में बाबा के पांच जुटा हुआ है, इसका मतलब 80% भान इस साकारी दुनिया में है। हमें क्या करना है, 20 से 30 वहाँ, 30 से 40 वहाँ, 50 वहाँ, 60, 70, 80, 100 वहाँ, 0 यहाँ, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा लक्ष्य है। कर्मात स्थिति अर्थात 100% बान के साथ बाबा के पास परम धाम में बैठना और बाबा के साथ मंगल मिलन मनाना। तो ये धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस करते रहें। ब्रह्मा बाबा की जब कर्मातीत स्थिति थी, उन दिनों में बच्चे बाबा से मिलने जाते थे बाबा की कुटिया में, तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था कि बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, बाबा मन से पूर्णतया अपने को परम धाम में ट्रांसफर कर चुके हैं। ये बाबा की आंखें बोलती थी, दर्शाती थी। इसलिए हमें अभ्यास करते करते योग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाते जाना है। क्वालिटी बढ़ाना अर्थात बाबा के पास जास्ती से जास्ती भान के साथ बैठना, और क्वांटिटी बढ़ाना अर्थात समय को बढ़ाते जाना, योग में स्थित होने के समय को बढ़ाते जाना। तो तो हमें दोनों प्रकार से प्रोग्रेस करना है। अभी कई बार हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन कभी किसी किसी के मन में थोड़ा सा डाउट आता है, पता नहीं परम धाम में बाबा कौन से कोने में बिंदी बैठे हैं, और मैं 2 साल की 3 साल का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। मैं बाबा को याद तो करती हूँ, लेकिन मेरी याद बाबा तक पहुँचती है या नहीं, ये थोड़ा संशय कभी कभी किसी किसी के मन में आता है। आता है भाई, किसी के मन में आता है? देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। मेरे मन में भी ये 3 साल तक, जब मैं ज्ञान में आया 72 से 75 तक, ये संशय था। लेकिन जो विधि आपके साथ मैंने शेयर की, उसके अनुसार मैं योगाभ्यास करता रहा, और 77 में 3 मार्च को बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिला। एक तरफ बाबा के दीदी जी बैठी थी, दीदी मनमोहिनी जी, और दूसरे तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठे थे, और मैं सामने बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, फिर दृष्टि देने के बाद टोली देने के लिए हाथ सामने किया, लेकिन टोली न देते हुए हाथ पीछे किया। मैं घबरा गया, पता नहीं क्या बात है, कौन सी भूल मेरे से हुई जो बाबा मुझे टोली नहीं दे रहे हैं। तो बाबा ने दीदी के तरफ देखा और कुछ महावाक्य उच्चारण किए। बच्ची, इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। ये 2 महावाक्य सुनते ही मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। क्यों खुशी हुई? जिसको मैं याद कर रहा हूँ वो खुद कह रहे हैं, याद का चार्ट अच्छा है, इसका मतलब मेरी याद बाबा को पहुँचती थी, उसका कंफर्मेशन मुझे मिला। उसके बाद मेरे मन में कभी भी ये संशय नहीं आया। वास्तव में क्या है, ये जो सारा संसार है, एक गतिमान एक सिद्धांत के आधार पर है। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम यहाँ बैठे हुए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई संकल्प करते हैं, वो संकल्प उस आत्मा पर ठका करता है, उस पर पहुंचता है, और उसका रिजल्ट में, रिस्पांस में वो हमें याद करता है। उसका ज्वलंत उदाहरण है, बाबा मुरली में कहते हैं, बांधेली माताएं जो होती है, घर वाले उनको बहुत तंग करते हैं, और जब तंग करते हैं तो माताएं तड़प तड़प कर जिगरी प्यास से मुझे याद करती हैं, तो उनकी तड़पाने वाली याद मेरे पास पहुंचती हैं, तो बाबा की आंखों में आंसू आते हैं कि देखो मेरी बच्ची कितना सितम सहन कर रही हैं, तो बाबा उसको एक्स्ट्रा सकाश देते हैं और एक्स्ट्रा स्नेह देते हैं। और इसलिए बाबा कहते बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती हैं, क्योंकि वो बहुत जिगरी प्यार से मुझे याद करती है। इसलिए एक बात हमें याद रखना है, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। क्या बोला? याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। हर एक जो संकल्प हमारे मन में होता है वो प्यार के परसेंटेज से, मात्रा से भरपूर होगा, तो वो संकल्प बाबा पर पहुंचता है, ठका करता है, और बाबा से ऐसा ही रिस्पांस स्नेह के रूप में और शक्तियों के रूप में हमें प्राप्त होता है। एक बार क्या हुआ, हम मधुबन निवासी बाप दादा से 87 में मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। बाबा से एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा, बाबा जब हम योग में बैठते हैं तो कैसे समझें मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं। तो बाबा ने शक्तिशाली योग की दो निशानियां बताई थी। शक्तिशाली योग में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है, अग्नि योग के प्रज्वलित होती है और उस अग्नि में हमारे विकर्म भस्म हो रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की महसूसता हमें होती है। हल्केपन की महसूसता क्यों होती है, क्योंकि हमारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो घटने लगता है, तो उसके कारण हल्केपन की महसूसता होती है। और खुशी की महसूसता क्यों होती है, क्योंकि हम प्रोग्रेस करते हैं, संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें खुशी की भी अनुभूति होती है। इसलिए जब भी हम बैठक का योग करते हैं उस समय ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते जाना है। और चलते फिरते उठते बैठते हमें साधारण याद अर्थात रूह रिहान या फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है, क्योंकि बैठक के योगाभ्यास में एकाग्रता की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। और एकाग्रता के आधार से योगाभ्यास में हमें बहुत गहन अनुभव होता ही होते जाते हैं। और कर्म करते समय कर्म में हमारा कुछ भान बिजी रहता है, मान लीजिए 100% भान में से 30-40% कर्म में बिजी है, तो बचा हुआ 50-60% भान हम बाबा के तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। कर्म और योग साथ साथ चलता रहता है, उससे क्या होता है, कर्मों में दिव्यता आती है, कर्मों में श्रेष्ठता आती रहती है। इसलिए कर्म योगी भी हमें बनना है, लेकिन जब हम बैठक का योग करते हैं बहुत गहन योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। अभी एक सेकंड में बाबा की याद में हमें टिकना है, उसकी विधि क्या है, एकदम देह से न्यारा हो जाएं, मैं हूं देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। दिव्य सितारा समझते ही आत्मा उड़ने लगती है, उमंग उत्साह के पंख लगते हैं और परम धाम में बाबा के पास बैठ जाती हैं और हम बाबा के साथ मधुर मिलन मनाते जाते हैं। तो ये है सरल विधि। बाबा के और हमारे के बीच में एक छोटी सी दीवार है, कौन सी, देह के भान की दीवार है। इस दीवार को हम हटा देते हैं, इस दीवार को हम भुला देते हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है। बहुत अच्छी तरह से बाबा ही बाबा हमारे नैनों के सामने घूमते हैं, बाबा की याद बहुत सरल होती जाती है। इसलिए आप सभी मधुबन में आए हैं तो मधुबन की धरती का पूरा लाभ आपको लेना है, क्योंकि सारे विश्व के ग्लोब में मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है जहां आप पहुंचे हैं। तो यहां हमें क्या करना है, बहुत सुंदर अनुभूतियों की, अलौकिक अनुभूतियों की पूंजी को, खजाने को बढ़ाते जाना है, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी, ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल बनती जाएगी। तो अभी हम आधा घंटा बहुत पावरफुल योग में बहुत सुंदर योग के अनुभव करने जा रहे हैं। एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, सब डायरी पेन पर्स वर्स सब हटा के बाजू में रखेंगे और बिल्कुल आजाद पंछी बनकर बैठेंगे। आजाद पंछी अर्थात मैं आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिंजरे से एक सेकंड में उड़कर बाबा के पास बैठ जाऊं। बहुत सुंदर गहनुभूति में हम खो जाएंगे। तो चले हम बाबा के पास योग की गहन अनुभूति में खो जाने वाले हैं, खजाने प्राप्त करने जा रहे हैं।